से भरे अंदाज में बुलाए बा। शांति, गुड इवनिंग। दिवाली का समय नजदीक आने वाला है, सबके घर में बहुत सारे इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, किसी को सफाई करनी है, किसी को शॉपिंग करनी है, उस सबके बीच में भी हम सभी ये टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। आप सब लोग जल्दी 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 कुछ कुछ करना पड़ता होगा ना, पर बहुत क्या बोलते हैं, आप सबके लिए बहुत सारी मुबारकें, बधाई हो कि इतने दिन से, टुडे इट्स सिक्स्थ डे, और हम सब रोज 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 क्लास में पहुंच रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, सभी होमवर्क करते हैं रोज? कल का क्या होमवर्क था? कल का या भी रेगुलरली एक ही होमवर्क है जो हमें रोज करना होता है? अच्छा, गार्गी बहन लिखते हैं, कर रहे हैं। और बाकी सब, ललिता जी भी कर रहे हैं, मंजूरी बहन कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं होमवर्क? और कौन करते हैं? निरंजना जी, ऋषि जी, ओके, कृतिका जी, ओके, शर्मिष्ठा जी, ओके। तो आप सभी अपनी नोटबुक्स भेजेंगे ना फिर हमें? वेरी गुड। उसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे आप घर के अपने बच्चों की नोटबुक डेकोरेट करते होंगे ना, कभी हाईलाइट किया, कभी कलर किया, कभी टू थ्री कलर पेन यूज किया, वैसे भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया और फिर आज हम क्या करने वाले हैं। हमने अपने को जाना, मैं आत्मा हूँ, और जैसे जैसे हम यहाँ से रिकैप कर रहे हैं ना, अच्छा डेली क्विज भी करते हैं हम। वेरी गुड। क्विज में मजा आता है आपको? अच्छा लगता है क्विज जब आता है तो? वेरी गुड। देखो, हमने अपने बारे में जाना था कि मैं कौन हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, शरीर में मस्तक प्रकृति के बीच में मेरा निवास स्थान है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, ये शरीर नाशवान है, भौतिक है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। फिर हमने जाना, मैं आत्मा ही पंच कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली। ऐसे ही फिर हमने जाना, मैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूँ। हमने ये भी जाना, फिर हमने मन के बारे में डिटेल में जाना, बुद्धि के बारे में जाना, संस्कारों के बारे में जाना, फिर हमने परमात्मा के बारे में जाना। बहुत सारी मान्यताएं जो आज तक हम सुनते आए, मानते आए, जिनको जानकर, जिनको मानकर हम बहुत कुछ करते आए, उन मान्यताओं को भी हमने चेक किया कि क्या वो सही थी या बस जो सब कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो हमें समझ आया कि परमात्मा की बहुत सारी मान्यताएं जो हम सुनते थे, वो कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर हमने परमात्मा के सत्य परिचय को जाना कि परमात्मा कौन है। वो निराकार सर्वशक्तिवान शिव है, जिसको हमने कई धर्मों में उनके रेफरेंसेस भी देखे कि कैसे उनको याद किया है, और हम सब प्यार से क्या कहते हैं उनको, हम सब क्या कहते हैं फिर, हम सब प्यार से कहते शिव बाबा। तो शिव बाबा हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, खुदा, दोस्त। फिर हमने कल जाना राजयोग का आधार क्या है, उनका सत्य परिचय, उनके साथ संबंध, प्रेम, और फिर उनसे हमें जीवन में जो प्राप्तियां होती है। और फिर हमने जाना राजयोग का प्रोसेस क्या है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम कंटेम्पलेट करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर हमारी बुद्धि उस विचारों की, उस श्रेष्ठ विचारों की धारा पर एकाग्र होती है, और जैसे जैसे बुद्धि एकाग्र होती है तो हम अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। तो हमने राजयोग को पूरा समराइज किया, और लास्ट में क्या देखा था हमने, लास्ट टू स्लाइड्स में हमने किसके बारे में जाना था, क्या जाना था लास्ट टू स्लाइड्स में? सब भूल गए, क्या जाना था? एट पावर्स, यस, शक्तियों के बारे में जाना था, है ना? कौन कौन सी शक्तियां थी वो, कौन कौन सी शक्तियां थी, कोई रिकॉल कर सकते फटाफट से, जल्दी जल्दी, कौन कौन सी शक्तियां थी वो? एट पावर्स तो थी, राइट, कौन कौन सी थी जल्दी से? सहन करने की शक्ति, पावर टू पैक अप, टॉलरेट, सहन, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद क्या थी? अकोमोडेट, यस, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट, पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू पैकअप भी लिखा है किसी ने, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, यस। अभी भी तीन बच गई है, फाइव नेम्स आ गए हैं। कौन कौन सी बच गई? यस, पावर टू जजमेंट, सहयोग करने की शक्ति और पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यस, परखने की शक्ति। और एक और बच गई, एक कौन सी बच गई, बैकअप, डिसर्न, विड्रॉ, अकोमोडेट, फेस, कौन सी बची एक, पावर टू जज, यस, धर्मेंद्र जी ने लिखा है निर्णय करने की शक्ति, वेरी गुड। तो 8 पावर्स हो गई। सबसे पहले हमने देखी थी, कौन सी थी पहली शक्ति, सहन करने की शक्ति। फिर हमने देखी समाने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। फिर थर्ड देखी पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। फिर पावर ऑफ जजमेंट, निर्णय करने की शक्ति। फिर हमने देखी सहयोग करने की शक्ति। फिर हमने देखा कौन सी पावर देखी, फिर हमने सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। कोई भी सिचुएशन आती है तो उसका सामना कैसे करें, सहयोग करने की शक्ति। फिर पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और एक हमने लास्ट में देखी थी पावर टू पैकअप, फुल स्टॉप लगाने की पावर। वेरी गुड। आज हम बात करेंगे, हमने आत्मा, परमात्मा और राजयोग को अच्छे से जान लिया। हमने कल ये भी जाना कि राजयोग क्या है, कल प्रैक्टिकली हमने किया भी ना। और कल हमने ये भी जाना था कि राजयोग का वास्तविक अर्थ क्या है, जिसमें सारे योग समाये हुए हैं। और राजयोग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ करके परम पिता परमात्मा को याद करना, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ और शिव बाबा को याद करना, यही वास्तविक राजयोग है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य स्थापित कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे, एक ऐसी स्टोरी आज आपके साथ में शेयर करेंगे, 5000 वर्षों की स्टोरी। अभी तक जितनी भी स्टोरी सुनी है ना, कोई साल, दो साल, दस साल, सौ साल, 500 साल पुरानी होगी, पर आज हम जो स्टोरी सुनेंगे वो है 5000 साल पुरानी स्टोरी। इससे लंबी और इससे पुरानी स्टोरी हमने पहले कभी नहीं सुनी, किसी ने सुनी 5000 साल की स्टोरी, कभी नहीं सुनी होगी, है ना, और ना ही इससे पुरानी कोई कहानी सुनी है। ये हम सभी मनुष्य आत्माओं की स्टोरी है, चाहे हमें इस कहानी के बारे में पता है या नहीं पता, ये हम सब मनुष्य आत्माओं की कहानी है। हम सब मनुष्य आत्माएं कैसे इस 5000 वर्ष में हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये वो कहानी है। इसमें सुख भी के बारे में भी हम सुनेंगे तो दुख के बारे में भी हमें पता चलेगा, कब हम सुखी थे, कब हम दुखी थे। देवत्व के बारे में भी पता चलेगा, तो दानव वाली प्रवृत्ति कब आई हमारे जीवन में उसके बारे में भी पता चलेगा, और कैसे दुख धाम परिवर्तन होकर के फिर से सुख धाम आता है उसके बारे में भी हम स्टोरी में जानेंगे। पर अभी स्टोरी सुनाई किसने, क्वेश्चन, स्टोरी सुनाई किसने होगी हम सभी को, किसने सुनाई ये स्टोरी। स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कौन सुना सकता है ये स्टोरी, 5000 इयर्स की स्टोरी। अच्छा, सोनम जी कहते हैं बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा सुनाते हैं, और शिव बाबा ही क्यों सुना सकते हैं, हम में से कोई क्यों नहीं शेयर कर सकता था ये स्टोरी, क्यों सुनाते हैं शिव बाबा ये स्टोरी। ये स्टोरी वो ही सुना सकता है जो 5000 साल के इस चक्र से परे हो, है ना, जो दूर से सारा सब कुछ देख रहा हो, लेकिन दूर से देखते हुए भी जिसने इस स्टोरी में अपना रोल भी प्ले किया हो। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर इस समय अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं, और क्योंकि पूरे साइकिल में वो समय के काल चक्र से परे थे, जन्म और मृत्यु के चक्र में हमारे तरह नहीं आते, तो शिव बाबा ही जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ये 5000 वर्षों की कहानी हमें सुनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी कुछ ही दिन पहले नवरात्रे गए हैं ना, तो कई जगह गरबा रास होता है ना, तो क्या होता है, मान लीजिए एक ग्रुप में, एक सर्कल में 50 लोग गरबा कर रहे हैं, है ना, रास कर रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, लेकिन वो सर्कल में है सारे लोग। अब जब वो सर्कल में है तो फिर क्या होता है, उनमें से 50 लोग हैं, हम भी मान लीजिए, इमेजिन करिए कि हम भी उसमें से एक है, उन 50 में से एक हम हैं, हमने 2 घंटा गरबा किया, उसके बाद में कोई हमसे पूछे कि सबसे बेस्ट कौन कर रहा था, क्या हम बता सकते हैं, क्या हम बता सकेंगे, क्यों नहीं बता सकते, हम भी तो 2 घंटे से वही थे, क्यों नहीं बता सकते, हम भी वही थे, हमारे आजू बाजू में भी कुछ लोग थे, बता क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी पोजीशन से ना हमें वो सारे नहीं दिख रहे थे, कुछ दिख रहे थे सामने के इधर उधर के, लेकिन कुछ लोग ऐसी जगह पर थे कि हमारी पोजीशन से वो हमें दिखाई नहीं देते थे। और किसी ने आंसर लिखा है क्योंकि हम खेलने में बिजी थे, हम अपने में ही मगन थे इसलिए भी नहीं दिखे थे। तो इसलिए हमें नहीं, क्योंकि हम सब वही थे ना। अच्छा, अब हम तो जजमेंट नहीं कर सकते थे, और अगर इसी में से जजमेंट निकालना होता कि हु इज द बेस्ट डांसर, किसका ड्रेस सबसे अच्छा था, किसका कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा था, किसके स्टेप सबसे अच्छे थे, तो कौन, हमें जज बिठाने पड़ते हैं ना बाहर अलग से, जो कि सर्कल के बाहर होते हैं। वो उस समय गरबा नहीं कर रहे होते हैं, वो बाहर बैठ करके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दूर से, तब वो एकदम सही सही रिजल्ट्स निकालते हैं कि इसका स्टेप सबसे अच्छा था, इनका ड्रेस सबसे अच्छा था, इनका कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा था। ऐसा ही होता है, वो सही निर्णय क्यों दे पाए, क्योंकि वो दूर से सबको देख रहे थे। और वही उसमें क्या क्या गड़बड़ हुई, क्या बेस्ट पार्ट था उस डांडिया का, वही शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो 5000 वर्षों की कहानी है, ये जो काल चक्र की कहानी है, ये हमें कौन शेयर कर सकता है? परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, क्योंकि वो ही इस ड्रामा के, इस कहानी के, इसको कह दो मुख्य एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, क्योंकि वो आकर के अपना पार्ट भी प्ले करते हैं, तो वो ही हमें ये सारी कहानी सुनाते हैं। लेकिन इस कहानी का एक बहुत ब्यूटीफुल रेफरेंस, बहुत ब्यूटीफुल संबंध हमारे एक बहुत कॉमन सिंबल के साथ में है, जो हम सब हर श्रेष्ठ कार्य में वो सिंबल बनाते हैं। वो कौन सा सिंबल है? वो है स्वास्तिका का चित्र। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है टू प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन। स्वास्तिका का चित्र हम सब बनाते आए ना, चार भाग उसमें दिखाते हैं। तो कैसे ये कहानी उस स्वास्तिका से रिलेट करती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। परंतु काल चक्र, टाइम साइकिल, वर्ल्ड टाइम साइकिल, इसके बारे में हम जानते हैं। काल चक्र, चक्र जैसा नाम ही है ना, चक्र, समय का चक्र, साइकिल। अब आप देखिए समय की जो, नेक्स्ट स्लाइड, समय की जो रफ्तार है वो कैसी है? साइकिल। समय शाश्वत है और साइकिल में मूव करता है, जैसे दिन और रात का चक्र है। कभी हमने कहा कि दोपहर के बाद रात होगी कि नहीं होगी? आज किसी को ऐसा क्वेश्चन आया मन में कभी? जितनी भी उम्र है, 20, 30, 40, 50, 60, कभी इतने सालों में एक बार भी ऐसा क्वेश्चन आया कि आज रात भी होगी कि नहीं होगी? कितनी भी बजे होगी, कई कंट्रीज में थोड़ा लेट भी सूर्य अस्त होता है, लेकिन फिर भी रात होगी। इट्स नेचुरल, साइक्लिक प्रोसेस है। हर रोज, जैसे चार पार्ट्स होते हैं, हर रोज रात्रि होती है, फिर भोर होती है जिसको हम प्रभात कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। ऐसे साइकिल चलता रहता है और ये निरंतर चल रहा है। क्या हम कभी ये क्वेश्चन उठाते हैं कि पहला दिन और रात सृष्टि पर कब हुआ था? क्या कभी क्वेश्चन मन में आया कि पहली बार रात कब हुई थी? आया ये क्वेश्चन कभी मन में, किसी के मन में आया पहली बार रात कब हुई थी? नहीं आया ना। इट्स वेरी नेचुरल, जब से जन्मे हैं, जब से समझ आई है हमको, हमारे पूर्वजों को, उनको रात और दिन का चक्र चल रहा है ना। ऐसे ही जल चक्र, जो वाटर साइकिल होता है, उसमें भी क्या होता है, बादल बरसते हैं, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर वापस क्लाउड्स बनते हैं, फिर बादल बरसते हैं। अब ये पहली बार किस दिन बरसात हुई थी, कितने साल पहले हुई थी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ऐसे ही ऋतुओं का चक्र है। अभी देखिए सर्दियां शुरू हो रही है, फिर ऐसे अलग अलग ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना। ऐसे अलग अलग ऋतुओं का चक्र है और वो साइक्लिक है। हर साल, हर 12 महीने में एक साइकिल का, एक साल का चक्र है ना ये। वाटर साइकिल 1 ईयर का होता है, डे और नाइट का साइकिल 24 आवर्स का होता है, 24 घंटों का होता है। ऐसे ही इस, नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे ही इस सृष्टि चक्र का भी एक निश्चित समय है। जैसे दिन और रात का चक्र 24 घंटे का होता है ना। ऋतुओं का चक्र जो है वो एक वर्ष का होता है, खास भारत में तो एक वर्ष का होता है। तो जो समय का चक्र है, संपूर्ण सृष्टि का जो चक्र है, वो कितने समय का है? उसकी उम्र है 5000 वर्ष। और हम देखेंगे सृष्टि चक्र में 0 से शुरू होकर के 5000 वर्ष तक जा रहा है। और इस पूरे चक्र को भी बहुत सुंदर शब्द है जो कहते हैं, इसको कहते हैं कल्प, वन फुल कल्प। वन साइकिल इज वन कल्प और इसकी आयु है 5000 वर्ष। और इसमें आप देख सकते हैं चार भाग दिखाए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार भाग किसका प्रतीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये स्वास्तिका के चार हिस्से हैं जो स्वास्तिका हम आज तक बनाते हैं शुभ समझ करके। उसके पीछे कोई हमें स्टोरी या क्या सिग्निफिकेंस है वो कुछ भी नहीं पता, पर हम हमेशा उसको ड्रॉ करते हैं। हमें भी याद है जब हम छोटे थे ना, तो हमारी ग्रैंड मदर सिखाती थी उल्टा 7 बना के उसको ड्रॉ करना है। कोई पूजा वगैरह होती थी ना, तो छोटे बच्चे होते कहते हम बनाए तो गड़बड़ हो जाता था हमेशा। तो उन्होंने एक पैटर्न सिखाया हुआ था कि उल्टा 7 बना के ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगा, है ना। तो ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, जिसके चार भाग है। एक है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। परंतु अगर हम 5000 के चार बराबर हिस्से करते हैं तो एक कितने का होता है, एक युग कितने समय का होगा, कितने समय का होगा? स्क्रीन पर भी देख रहे थे ना अभी हम सभी। अगर हम 5000 के चार बराबर हिस्से करते हैं तो एक युग 1250 वर्ष का होता है। इसका मतलब है इस सृष्टि पर, अब हम जो कहानी सुन रहे हैं, सृष्टि की स्टार्टिंग आदि काल में क्या था, यहाँ पर स्वर्ण काल था जिसको सतयुग कहा जाता था। और वो सतयुग कितना समय चला, 1250 वर्ष। ऐसे ही त्रेता युग भी इतना ही समय चला, द्वापर युग भी इतना ही समय चला और कलयुग भी इतना ही समय चलने वाला है। लेकिन फर्क क्या रहा फिर, क्यों उस समय को हमने सतयुग कहा और आज हम कलयुग कह रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, स्वास्तिका जो संस्कृत शब्द है, स्वास्तिक का अर्थ है स्वस्थिति का सूचक। हमारी स्थिति, हमारी कहानी है ना। ये एक बहुत सुंदर गीत है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिस जो हमारी तुम्हारी कथा हो। तो आज हम भी वो हमारी और तुम्हारी कथा सुन रहे हैं कि हम आत्माओं की ही स्टोरी, हम किसी तीसरे की बात नहीं कर रहे, हम सब स्टोरी के एक्टर्स हैं। तो जो स्वस्थिति माना मुझ आत्मा की स्थिति क्या थी सतयुग में, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोल इन द टाइम साइकिल। आत्मा की जो डिफरेंट स्टेजेस है काल चक्र में, उसके बारे में ये हमें बताता है। स्वस्थिति का सूचक है, हमारी स्थिति क्या थी और किसी की बात नहीं है, मुझ आत्मा की आज मेरी स्थिति क्या है, और 5000 साल पहले जब इस सृष्टि पर स्वर्ग था तो मेरी स्थिति क्या थी। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, जब इस सृष्टि पर स्वर्ग था, आदि हुई थी सृष्टि की, स्टार्टिंग थी, तो उसको स्वर्ण काल कहा गया। उस समय के मनुष्यों को मनुष्य नहीं कहा गया, उन्हें देवी देवता कहा गया। उनके लिए कहा गया कि ये सर्व गुणों से संपन्न है, सतो प्रधान आत्माएं हैं। सतो प्रधान मीन्स 100% हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर आत्माएं हैं। और संपूर्ण, कंप्लीट किसका सिंबल है ये, कंप्लीट जो शब्द लिखा है ना, इसका भाव है, कंप्लीट कहने का भाव है। जैसे अभी देखिए, कुछ दिन पहले कौन सी पूर्णिमा गई थी, शरद पूर्णिमा हम सबने मनाई ना, सबने कुछ बनाया था और चंद्रमा के नीचे बैठे थे। तो जैसे पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में 16 कलाएं संपूर्ण होती है, ठीक ऐसे ही उस दिन वो फुल मून होता है। अंग्रेजी में कहते हैं फुल मून डे, है ना। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर जो 16 कलाएं होती है, 16 कर्म कलाएं हैं, इनके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन आत्मा भी अपनी सारी कलाओं से संपन्न होती है। उस स्थिति पर इस सृष्टि में भी सतयुग होता है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान होती है। जो 7 गुण हमने सुने थे ना आत्मा के, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, आत्मा इन 7 गुणों में भरपूर होती है। तो इस समय को क्या कहते हैं हम, इस समय को हम कहते हैं स्वर्ण काल। और देखिए, इसका आर्म जो है ना वो कैसा है, इसका आर्म जो दिखाया है वो कैसा दिखाया है, जैसे कि दाता का हाथ दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे है ना ये हाथ, आशीर्वाद का हाथ, दाता का हाथ, ऐसे दिखाया। हमारी स्थिति, क्योंकि हम भरपूर थे ना, तो हमारी स्थिति देने वाली है। तो आज देखिए, आज भी हम देवी देवताओं के आगे जाके मांगते हैं ना, चाहे धन मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, मांगते हैं। फिर क्या हुआ, सतयुग जब पूरा हुआ, अब सतयुग क्योंकि 1250 वर्ष चला, तो मनुष्य आत्माएं हैं हम सभी, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आएंगी कि नहीं आएंगी? जन्म पुनर्जन्म हुए होंगे सतयुग में, 1250 साल हम ऐसे के ऐसे ही रहे, क्या हुआ होगा? जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आत्माएं आई, लेकिन जैसे जैसे आत्मा जन्म लेती है, जीवन जीती है और फिर शरीर छोड़ती है, इस प्रोसेस में आत्मा की बहुत सारी शक्ति भी खत्म होती जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे चले, सत्यु का एक दिन बीता, दो दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, फिर ऐसे ऐसे करते, जब तक 1250 साल बीतते हैं, लगभग उस समय तक आत्मा की कुछ क्वालिटीज भी तो कम होंगी कि नहीं होंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने घर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, हाई क्वालिटी पेंट कराया, हाई क्वालिटी सीमेंट यूज की, बहुत बढ़िया नींव खुदवाई, एवरीथिंग ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, पर क्या वो मकान 5 साल, 10 साल, 20 साल और 50 साल बाद भी वैसा ही दिखेगा? चाहे हम हर साल उसका बेस्ट रिनोवेशन करा रहे हैं, हर साल उसकी चीजों की अच्छी पेंटिंग, पॉलिशिंग और रोज इतना मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी कि नहीं होगी? वो पुराना दिखेगा, हो सकता है बाहर से हमने बहुत बढ़िया उसका आजकल कराते ना, रिनोवेट करा लेते हैं, टाइल्स वाइल्स लगवा लेते हैं, हाई क्वालिटी पेंट, लेकिन अंदर से तो हमें पता है ना हमारा मकान 50 साल पुराना है, पता होता है ना, कमजोर तो होता ही है ना, बिल्डिंग कमजोर होती है ना। ठीक ऐसे ही मनुष्य आत्माएं जब इतने जन्म लेती हैं, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है, समय आगे टिक 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 आगे बढ़ता जाता है, आत्मा जो 100% फुल थी उसमें कुछ फर्क पड़ जाता है, और जब तक सत्ययुग से त्रेता युग आता है तो वो क्वालिटीज 100 से 75% हो जाती है। एक गोल्डन एज का एक छोटा सा क्लिप हम सभी देख पा रहे हैं कि कैसी दुनिया थी वो, हीरे जवाहरात, सोने के महल और लक्ष्मी नारायण का राज्य, चलने को भी पुष्पक विमान। तो ये है सत्ययुगी दुनिया, सृष्टि का वो समय जब इस सृष्टि पर सत्ययुग था, संपूर्ण सुख वैभव। और ये कहानी किसकी है, किसकी कहानी है ये, किसकी कहानी है ये, ये किसी और की नहीं है। जब हम आत्माएं ही पवित्र थी तो ये हमारी ही कहानी, हम ही ऐसे थे। जैसे हम नहीं बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा पेरेंट्स बोलते हैं, अरे हम भी छोटे थे ना तो हमारे शरीर में भी बहुत ताकत थी, हम भी तुम्हारी तरह भाग भाग के सब कुछ करके आते थे। लेकिन आज वो नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी दिन तो था ना, किसी दिन तो उनके जीवन में ऐसा था ना। ऐसे ही हमारी भी किसी दिन, किसी समय, इस काल चक्र का वो समय जब हमारी स्थिति ऐसी थी, हम ऐसे थे। फिर हम आत्माएं त्रेता युग में आई, फिर क्या हुआ, फिर जन्म पुनर्जन्म इस प्रोसेस में आते आते समय के साथ 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 फिर क्या हुआ, आत्मा 75% से क्या हुआ, आत्मा की जो क्वालिटी थी त्रेता युग के अंत तक, वो थोड़ी और डिक्लाइन हो गई और 50% ही रह गई, क्योंकि हाफ ऑफ द साइकिल हैज कंप्लीटेड ना, सत्ययुग से त्रेता एंड तक कितना हो गया, आधा साइकिल हो गया, और आधे साइकिल में 100 से आत्मा की जो क्वालिटी थी, जो प्योरिटी थी, जो सतो गुण थे, वो कहां पहुंच गए, जैसे 50% पे ग्रेजुअली कम होता गया, कम होता गया। और इन दोनों समय पे सृष्टि पर जो धर्म था, वो कोई धर्म जैसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि एक ही सिस्टम था सब कुछ, और वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म, कोई दूसरा था ही नहीं, सभी आत्माएं देवात्माएं थी, सभी संपूर्ण निर्विकारी थी। और त्रेता युग को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो कहेंगे सिल्वर एज, तो स्वर्ण काल, फिर इसको हम दूसरे शब्दों में सेमी स्वर्ग भी कहते हैं, स्वर्ग तो सत्ययुग था लेकिन फिर भी ये भी स्वर्ग के समान ही था, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ गया डे वन और त्रेता युग में, कुछ तो फर्क पड़ गया। लेकिन ये जो सृष्टि थी सत्ययुग और त्रेता, यहां पर कोई भी मनुष्य आत्मा दुखी नहीं थी, कोई भी डिस्टर्ब नहीं था, क्यों नहीं थे, क्योंकि सभी आत्मा कैसी थी, सतो प्रधान थी, सर्व गुणों से संपन्न थी, प्योर थी आत्माएं, इसलिए यहां पर कोई भी दुख और अशांति नहीं थी। परंतु समय की गति बड़ी बलवान, समय का पहिया चलता रहा, और त्रेता युग के बाद क्या आएगा, फिर क्या आया, जैसे मकान धीरे धीरे पुराना होता है, सुबह होती है हर रोज, धीरे धीरे दोपहर होती है, फिर शाम होती है, और फिर धीरे धीरे रात भी होती है, तो इस सृष्टि चक्र में भी सायंकाल का समय आया, और वो आया एक तरह से द्वापर युग। द्वा जो शब्द ना, द्व मीन्स टू हो गए, डबल हो गए। अब कुछ आत्माएं तो जो श्रेष्ठ आत्माएं बची, जो सतयुग से चलती हुई आई, तो कुछ आत्माएं तो सतयुग से कंटिन्यू ट्रेवल कर रही थी, सतयुग में भी रोल प्ले किया, त्रेता में भी रोल प्ले किया और अब द्वापर में आ गई। कुछ आत्माएं अभी भी परमधाम से आती जा रही हैं और इसीलिए आप देखिए कि जो सतयुग की वो थी, पॉपुलेशन थी, वो बहुत कम थी, लेकिन अभी देखिए रोज 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। इसका कारण क्या है? आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आती जा रही हैं और शरीर धारण करके रोल प्ले करती जा रही है। जब सतयुग और त्रेता सृष्टि पर था तो सभी आत्माएं कैसी थी? प्योर थी, तो उनको कोई दुख और अशांति नहीं थी। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में प्रवेश किया, समय और आगे बढ़ा, तो द्वापर युग उसी समय को कहा गया है जब बुद्धि में दो बातें आ गई, एक प्योरिटी और एक इम्प्योरिटी। और जैसे ही इम्प्योरिटी को मनुष्य आत्मा ने एक्सेप्ट किया, माना अपने कर्मों को मनुष्य ने अपवित्र बनाया, तब से क्या हुआ? जीवन में दुख और अशांति आई। ये जो पांच विकार थे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांच विकारों ने जैसे मनुष्य के ऊपर हमला कर दिया, और जैसे जैसे इनके इन्फ्लुएंस में आते गए, लाइफ में वो जो सुख और शांति थे ना सतयुग के, वो कम होते गए। और अब जो कुछ चीज, मान लीजिए मेरे पास पहले बहुत बड़ा बंगला था, फिर मैं छोटे घर में शिफ्ट हुई, फिर मैं एक फ्लैट में भी शिफ्ट हो गई, फिर अभी पता चला फ्लैट भी किराए का आ गया, और फिर उसके बाद पता चलता है एक कमरे में ही रहना पड़ रहा है अब तो। तो अगर हमने सारे फेजेस अपनी ही लाइफ में देखे होंगे एक ही जीवन में, तो कैसा लगेगा? दुख होगा ना। ऐसे ही हम मनुष्य आत्माएं, हम देवात्माएं थी सतयुग में, सर्व गुणों और शक्तियों में भरपूर थी, जितनी हमारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी 100% वो थी, 16 कलाओं से संपन्न थी, लेकिन काल चक्र में आगे बढ़ते 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 वो प्योरिटी लॉस्ट हो गई। जीवन में विषय विकारों ने प्रवेश किया, देह अभिमान आ गया, उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच विकार आ गए, जीवन में दुख शुरू हुआ। और दुख शुरू हुआ तो उस दुख को हटाने के लिए, उस दुख को मिटाने के लिए क्या किया हमने? उसके लिए हमने भक्ति करना शुरू किया, देवी देवताओं के मंदिर बनाए, उनके आगे जाके प्रार्थना करना शुरू किया, अलग अलग तरह से उनको रिझाना शुरू किया। और इसी बीच जब मनुष्य आत्मा डाउनफॉल में जा रही थी, तो अनेक धर्म पिताएं आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, इब्राहिम आए, इन्होंने आकर के धर्म उपदेश दिए, धर्म स्थापित किए, ताकि मनुष्य आत्माएं जो बुरे कर्म करती जा रही है, जो बुराई की ओर जाती जा रही है, वो उससे रुके। धर्म उपदेश दिए, धर्म स्थापन हुए उस काल में, लेकिन फिर भी समय की गति तो निरंतर आगे बढ़ती ही गई, है ना। एक मकान जो 50 साल पहले बनाया था, वो हर दिन समय के साथ पुराना होगा कि नया होगा, क्या होगा? चाहे कोई अच्छे से अच्छी कंपनी वाला आ जाए पेंट देने के लिए, चाहे कोई अच्छे से अच्छी वॉल पुट्टी करके जाए, चाहे कितना भी कोई टाइल्स लगा के और विनाइल लगा के, कुछ भी लगा के उसको कितना भी रेनोवेट करें, वो हर दिन पुराना होता जाएगा। ऐसे ही धर्म पिताएं आए, उससे मनुष्य आत्माएं रुकी, जो उन्होंने धर्म उपदेश दिए थे उससे हम मनुष्यों ने गलत कर्म करने से अपने आप को बचाया, परंतु फिर भी समय को तो आगे बढ़ना ही था। और इस सांझ के समय के बाद तो इस सृष्टि पर कौन सा समय आया जिसमें आज हम सभी जी रहे हैं? वो समय था घोर कलयुग, संपूर्ण अज्ञान अंधकार। विज्ञान ने तरक्की तो इतनी कर ली कि चारों ओर इतनी बढ़िया, आजकल तो एलईडी लाइट्स का जमाना आ गया है, बिजली भी कम जलेगी और कम लगेगी और रोशनी भी बहुत होगी, लेकिन मनुष्य आत्मा डिप्लीट होती गई। बिकॉज इस समय तक आते आते हम पूरी तरह से भूल गए कि मैं आत्मा हूं क्या। और हम सभी आत्माएं 100%, जिसको आज की दुनिया में लोग एक शब्द कहते हैं मटीरियलिज्म, बॉडी कॉन्शियसनेस, इस देह अभिमान के साथ जीने लगे, मनुष्य आत्माएं जब इम्प्योर हो गई तो फिर क्या हुआ? सतयुग में 100% प्योर थे, आज वही आत्मा 100% इम्प्योर हो जाती है, क्या अच्छा लग रहा होगा हम सभी को? इसीलिए आप देखिए हम सभी को कितनी इच्छा होती है ना, सुख से रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें, हमारे घर में सारी चीजें होनी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जब हम सतयुग से ट्रेवल करते आ रहे हैं ना, वहां पर ये सब कुछ था। और फिर क्या हुआ? फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग आते आते सब कुछ धीरे 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 सारी प्योरिटी सारी शक्तियां सब कुछ क्षीण होने लगी। और इस समय पर हम देख रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, धर्म ग्लानि हो रही है। हम इस स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि कलयुग में क्या हुआ, चारों तरफ अत्याचार भ्रष्टाचार पापाचार, ऐसे ऐसे कर्म अखबार उठा करके, शायद आप लोग ज्यादा जानते होंगे, अखबार उठा करके पढ़ें या कोई न्यूज चैनल चला करके देखें, ऐसे ऐसे कर्तव्य हम सुनते हैं, ऐसी ऐसी बातें हम देखते हैं मनुष्यों के, ऐसे ऐसे कर्मों को हम देखते हैं जो लगता नहीं है किसी मनुष्य के कर्म है। तो ये कलयुग का समय है, अज्ञान अंधकार की रात्रि है, इस समय के लिए ही वर्णन है, चारों तरफ धर्म ग्लानि का समय है। और इस समय के लिए ही परमात्मा ने कहा है, जब जब इस सृष्टि पर धर्म ग्लानि होगी तब तब मैं इस सृष्टि पर आऊंगा। तो क्या इस समय परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर के इसको फिर से सतयुग बनाना जो परमात्मा का कर्तव्य है वो उसको कर रहे हैं? कलयुग अंत, अनेक उसमें लिखा ना, अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना। अब आप साइकिल में देखिए, सतयुग पास्ट हो गया, त्रेता पास्ट हो गया, द्वापर पास्ट हो गया, कलयुग पास्ट हो गया, अब क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए कायदे से, कलयुग के बाद कौन सा समय आएगा, कलयुग के बाद कौन सा समय आएगा, सतयुग ही आना चाहिए ना। लेकिन आज हमारी जो स्थिति है, जो मनोस्थिति है, क्या हम इस मनोस्थिति के साथ सतयुग में रह सकते हैं? आज हमारे अंदर इतनी सारी कमी कमजोरियां हैं, कभी काम वासना में मनुष्य की बुद्धि जाती है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मोह है। अब कोई अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछे कि इस ड्रामा की, इस साइकिल की एंडिंग कब है, तो एंडिंग तो क्या, क्योंकि घड़ी कभी रुकती है? 12 बजे हम कहें दिन की समाप्ति हो गई, हम कहते हैं ना 12 बज के 12:00 पे रात को नेक्स्ट दिन शुरू हो जाता है ना। 12:01 पर हम कहते हैं एएम हो गया है, सुबह हो गई है, सुबह का नेक्स्ट डेट चालू हो जाती है हमारे कैलेंडर में। तो कभी रुकता नहीं है ना, ऐसे पॉज नहीं आता। ऐसे ही इस सृष्टि पर हम ये कह सकते हैं कि कलयुग अंत, इस सृष्टि का एंड है, लेकिन रुकेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पॉज होगा। कलयुग अंत के बाद सतयुग की स्थापना होगी, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अब कलयुग में देखिए हमारी एनर्जीज बिल्कुल लो, सतयुगी आत्माएं एकदम 100% प्योर। तो ये जो गैप है, अगर हम इसको, ये जो चित्र हम ऐसे देख रहे हैं साइकिल में, अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, सब अपने यहां पर एक डायग्राम क्रिएट कीजिए, एक चित्र बनाइए। सतयुग टॉप पे है ना, फिर सतयुग के बाद क्या आ रहा है, त्रेता युग, फिर द्वापर युग उसके नीचे, सिर्फ कलयुग उसके नीचे। ठीक है, सब ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं ना, सतयुग उसके नीचे त्रेता युग, उसके नीचे द्वापर युग, उसके नीचे कलयुग। अब कलयुग से वापस क्या आना है सृष्टि पर, क्या आना है कलयुग के बाद, क्या आना है सृष्टि पर, कलयुग के बाद सतयुग आना है ना। अब कलयुग से सतयुग में डिफरेंस कितना हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना। कितने समय का डिफरेंस हो गया, 5000 वर्ष का डिफरेंस हो गया। कितनी क्वालिटी का डिफरेंस हो गया, यहाँ 100% प्योर, यहाँ एब्सोल्यूट इम्प्योर। तो इस डिफरेंस को कैसे मिटाया जाए, अगर आपने, कईयों ने साइंस पढ़ी होगी, यहाँ पर उसमें आता है एक लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी कहते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। जब भी कोई सिस्टम होता है अगर वो ऑर्डर में है, पूरा सेट है, तो कहते हैं उसकी एंट्रोपी जीरो है। और अगर वही सिस्टम पूरा डिसऑर्डर हो जाए तो कहेंगे इसकी एंट्रोपी 1 है। सतयुग में हमारी सृष्टि की एंट्रोपी फिर कितनी होनी चाहिए, जब सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब लॉ एंड ऑर्डर पे है, जो भी किंगडम है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है, तो फिर एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए, सतयुग की एंट्रोपी होगी, यस कृषिका जी लिखते हैं 1 0, सतयुग की होगी 0। और फिर और डिसऑर्डर में कब हुआ, अभी कलयुग में डिसऑर्डर में आ गया, तो कलयुग की एंट्रोपी कितनी होगी, 1। अब इस 1 को जब भी हम 0 करते हैं, केमिस्ट्री में आता है ये लॉ, जब भी हम एंट्रोपी को डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाते हैं, किसी भी सिस्टम को जब वो डिसऑर्गेनाइज है उसको फिर से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब ये जो दुनिया है, जो सतयुगी थी, आज तो नहीं है, आज कहां पर है हम, कलयुगी पे। अब कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है। तो हु इज दैट एक्सटर्नल एनर्जी? वो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और वो जो हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं, ज्ञान से हमारी समझ बढ़ती है, योग से वो एक्सटर्नल एनर्जी, हम सब आत्माएं प्योरिफाई होती हैं, हमें शक्ति मिलती है। तो ज्ञान और योग की जो एक्सटर्नल पावर हमें शिव बाबा देते हैं, उससे हम सभी मनुष्य आत्माएं कलयुगी से कैसी बनती हैं, कलयुगी से सतयुगी बनती हैं। तो फिर क्या हो गया, इस समय को हम क्या कहेंगे, जिस समय पर शिव बाबा आकर के ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको कहेंगे संगम युग। कौन सा समय है अभी सृष्टि का? दिस इज द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस कलयुग को बदल करके सतयुग बनाना है, उसके बीच का जो छोटा सा समय है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संगम युग। ये वही समय है जैसे कि हम एक मकान में रहते हैं, है ना, और उस मकान में हमारे पूर्वज, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत समय से रह रहे थे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम 50 साल से उस घर में रह रहे थे, हमारी फैमिली कई समय से उस साल उसी मकान में रह रही थी। फॉर एग्जाम्पल 50 साल से ये परिवार उसी घर में रह रहा था। अब इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ये कभी कहीं से पानी निकलता है, कभी कोई दीवार में से चूना निकलता है, कभी कहीं से पत्थर निकल रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं। अब हमको एक नया घर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसी मकान में रहते हैं और दूसरा मकान अगर हमें नई लैंड लेनी है तो वहां लेकर के उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, या हम ऐसे करते हैं कि जिसमें रहते हैं ना इसको पूरा गिरा देते हैं, फिर थोड़े दिन रोड पर रहते हैं और फिर नया घर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? हम उसी मकान में रहते हैं और नया क्रिएट करना शुरू करते हैं। कई लोगों के मकान बहुत बड़े बड़े भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस मकान के ही कुछ हिस्से में रहते हैं और कुछ हिस्से को ठीक करवाते रहते हैं, रेनोवेट करवाते रहते हैं, है ना। लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं करते ना कि उसको पूरा गिरा के और फिर नए में रोड पे रहें और फिर नए में जाएं। ऐसे ही इस सृष्टि पर भी अगर सतयुग आना है तो कब आएगा, उसकी तैयारी कब होगी, कब होगी सतयुग की तैयारी, जब हम कलयुग में रहते हुए ही सतयुग बनाएंगे। सतयुग कोई दीवारों से या सतयुग कोई ऐसा नहीं, कोई हमें सोने के महल क्रिएट करने हैं, हमको क्या करना है, हमको यहाँ से सतयुगी बनना है, हमें अपने आप को सतयुगी बनाना है। जब हम सतयुगी हैं दुनिया ऑटोमेटिकली सतयुगी बन जाएगी। और ये जो समय है, इस समय पर शिव बाबा जो सृष्टि पर आए हैं उनका प्रोजेक्ट ही ये है। जैसे कोई बड़ा आदमी कहीं जाता है ना तो उसका एक एजेंडा होता है कि वो वहां क्यों जा रहे हैं। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी कहीं जाते हैं ना तो उसके पीछे एक एजेंडा होता है कि वाई इज गोइंग देयर। ऐसे ही शिव बाबा अगर परम धाम से सृष्टि पर आते हैं तो क्यों आते हैं इस सृष्टि पर? वो इसलिए आते हैं ताकि ये जो इतने सारे अधर्म है ना, धर्म की ग्लानि हो गई है, चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है, उसका तो एक तरफ विनाश होना ही है, लेकिन साथ में वो नई सतयुगी दुनिया स्थापन करते हैं। हम तो सब क्या प्रे करते हैं, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं ना, मुझे शांति मिले, मुझे सुखी मिले। अब मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, 50 लोग उधर बोल रहे हैं, उस मंदिर में बोल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं, उस चर्च में बोल रहे हैं, उस मस्जिद में बोल रहे हैं, उसको तो सारी आवाजें सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, उनको सारी सुनाई दे रही है। अब वो सोचेंगे ना, मैं एक एक को कब तक करूंगा, इससे अच्छा मैं पूरी दुनिया को ही सतयुग बना देता हूं, तो ये सारी मनुष्य आत्माएं ही सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो उसका प्रोसेस क्या है, संगम युग पर शिव बाबा इस सृष्टि पर जब आते हैं, अभी कौन सा समय हो गया, वैसे कलयुग है, वैसे तो कलयुग है, दुनिया में हम बात करेंगे तो क्या कहते हैं, अरे भाई कलयुग चल रहा है, इसमें तो ऐसे ही होगा, है ना। लेकिन आज अगर हमें ये समझ मिली है कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हुए हैं, किस लिए आए हैं, इस कलयुगी दुनिया को बदल सतयुगी दुनिया को बनाने के लिए आए हैं, और तो मेरे लिए कौन सा समय इस सृष्टि पर, अब मेरे लिए कौन सा समय है, क्या मैं अभी भी कलयुग में हूं या अब मेरे लिए संगम युग है, क्योंकि मुझे भी तो जाना है उस सतयुग में, है ना। किसी के पेरेंट्स अगर बहुत बड़ा बढ़िया शानदार मकान बनाए तो उनके बच्चे उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बच्चे जाएंगे, है ना। तो हमारे पिता शिव बाबा इस सृष्टि पर प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं नई दुनिया की स्थापना, तो नई दुनिया के कोई उनको महल नहीं क्रिएट करने, नई दुनिया में जिसको रहना है उनको क्रिएट करना है, उनको उनको ठीक करना है। तो हमको वो ज्ञान और योग जो ये रोज रोज स्पिरिचुअल क्लास अभी हम कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद भी आपकी स्पिरिचुअल क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, है ना। ऐसे नहीं सोचना कि हो गए 7 दिन, कल के बाद हो गया खत्म। नो, अभी ये क्लास अब तो ज्वाइन कर ली है तो फिर अब प्रयोग पूरा ही करना है, बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़ना नहीं है। जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही छोड़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके छोड़ आप छोड़ सकते हो उसके बाद, आइदर योर एक्सपेरिमेंट इज फेल्ड और इट विल गेट सक्सेसफुल। बीच में बिना एक्सपेरिमेंट किए किसी को छोड़ना अलाउड नहीं है, है ना। या तो आप ये प्रूव कर ले अपने आप के लिए, किसी को प्रूव नहीं करना, या तो अपने आप के लिए प्रूव कर ले कि नो दिस इज नॉट राइट, नो नीड टू कंटिन्यू दिस कोर्स, और छोड़ दें। या फिर हम ये एक्सपेरिमेंट का इस निष्कर्ष पर निकल जाए कि हाँ ये ठीक है और मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन बिना निष्कर्ष के, बिना प्रयोग किए, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, हम में से कोई भी क्लास को लीव नहीं करेंगे अंटिल एंड अनलेस हम कोई निष्कर्ष निकालें। अच्छा, एक और निष्कर्ष भी हम सब कई बार निकालते हैं, वो ये है तो बहुत अच्छा लेकिन ना मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज बहुत अच्छी होती है ना, हम अगर आज कहीं गए थे, सेल लग रही थी और हम देखकर आ गए कि है तो बहुत अच्छी, हम ना कुछ भी करते हैं, कोई भी बहाना लगाते हैं, वापस उसी शॉप में, उसी मॉल पे जाते हैं और उसको लेकर के ही आते हैं, चाहे कोई कितना भी मना करे, वो कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, कितनी भी यूजलेस हो, लेकिन हमें पसंद आ गई ना तो हम लाते ही लाते हैं। ऐसे ही हमको खुद को ये चेक करना है, इफ दिस कोर्स इज गुड then I have to continue. If this course is not good, then I can leave. पर हमको ये लाइन नहीं बोलनी है, था तो अच्छा लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं छोड़ दिया, ये वाला ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन है, या तो जीरो या फिर कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जब शिव बाबा, टेक्निकल टीम कैन यू प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन, जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं इस कलयुग को बदल सत्युग को लाने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, तो उसको क्या कहते हैं हम, संगम युग, अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्फ्लुएंस एज, द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए आप कलयुग और सत्युग के बीच में छोटा सा समय दिख रहा है आपको, छोटा सा समय, इसको कहेंगे हम संगम युग। संगम युग बहुत बड़ा युग नहीं है, संगम युग बहुत छोटा सा समय है। इसको संगम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय पर मुझ आत्मा का, संगम मतलब होता है मिलन, तो मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। किया ना हम सबने मिलन, कल किया था ना हमने मेडिटेशन, उसके बाद भी आप सबने मिलन किया होगा, अपने अपने घर में चलते फिरते बाबा से बात की होगी, उनके साथ कुछ शेयर किया होगा, है ना। तो अब हम उसको जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं, तो अपने आप ही मिलन हो गया ना ये। अब ऐसे तो देखो शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे तो कभी नहीं दिखेगा कि मैं इधर हूं और शिव बाबा इधर है, दिखेगा कभी नहीं, पर अनुभव हर रोज होगा, हर समय पर होगा। तो इस समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, और क्यों आते हैं, इस कलयुग को बदल सत्युग बनाने के लिए। इसीलिए इसको, इसका एक और नाम है कल्याणकारी संगम युग। अब आप देखिए सत्युग से जैसे जैसे हम नीचे आए तो क्या हुआ, सत्युग से तो हर दिन हमारा डाउनफॉल हुआ, नेक्स्ट है, सत्युग से तो हर दिन नीचे 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 ही आते गए ना। सत्युग में 100% थे और कलयुग तक क्या पहुंचे, जीरो पर। तो संगम युग बेस्ट टाइम है, संगम युग बेस्ट टाइम है जब शिव बाबा परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं और हम जो जीरो थे उसको वापस कितना बना देते हैं, कितना बना देते हैं, जीरो को। शिव बाबा हमें ज्ञान, सहज ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखा करके इस जीरो को वापस 100% पर लेकर जाते हैं। इसलिए पूरे साइकिल में विच इज द बेस्ट टाइम, कौन सा समय अब पूरे साइकिल में बेस्ट है, आंसर आप सबके तरफ से आना चाहिए। सत्युग इज बेस्ट और त्रेता द्वापर कलयुग कौन सा टाइम बेस्ट है, साईं करुणा जी कहते हैं अभी का समय बेस्ट है, संगम युग बेस्ट है। संगम युग बेस्ट है, इसीलिए सत्युग को तो फिर भी स्वर्ण काल कहा गया है। माताओं को पता होगा डायमंड महंगा आता है कि गोल्ड महंगा आता है, क्या महंगा होता है, क्या महंगा होता है, डायमंड या गोल्ड, विच वन इज मोर प्रेशियस, डायमंड। इसीलिए इस संगम युग को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है हीरे तुल्य युग, इसको कहा गया है डायमंड एज। क्योंकि यही वो समय है जब हम चढ़ते हैं, अब हमने ऐसे देखा था ना एक सीढ़ी के फॉर्म में, सतयुग फर्स्ट स्टेप, त्रेता युग नेक्स्ट, द्वापर युग नीचे, कलयुग नीचे, ठीक है। अभी हम एकदम नीचे पर हैं, जाना कहाँ है, सतयुग में। लेकिन शिव बाबा ने ना एक बहुत अच्छा ऑफर हमें दिया हुआ है, और वो ऑफर ये है कि जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे हमें उतनी लिफ्ट मिलेगी सतयुग में जाने की। हमें ऐसे ऊपर चढ़ के नहीं जाना है, उतरे तो हम एक 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 करते हैं, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। लेकिन अब कलयुग से सतयुग जाने के लिए, कलयुग से सतयुग जाने के लिए टाइम बहुत थोड़ा है, है ना। उतरने में कितना समय लगा, सतयुग से कलयुग एंड तक आने में कितना टाइम लगा हमको, कितना टाइम लगा, हाँ कृष्णिका जी लिखते 5000 ईयर्स लगे हमको, ज्यादा समय लगा, है ना, बहुत समय लग गया। और चढ़ने में कितना समय लग रहा है, कितना लग रहा है चढ़ने में, बहुत थोड़ा सा समय। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल एनर्जी, वो सर्वशक्तिवान, है ना, वो स्वयं इस समय पर आए हुए हैं, वो हमें ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। जितना जितना हम इस ज्ञान और योग को फॉलो करते जाएंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, और जो आने वाली नई सतियों की दुनिया है उसमें हम अपनी पोजीशन क्लेम करते जाएंगे, है ना। इस ऑल सीट्स आर वेकेंट सतियों की दुनिया में, जो भी, क्योंकि सतियों की दुनिया है ना, तो सतियों की दुनिया में तो पूरा राज्य चलेगा, दरबार होगा, कोई किंग क्वीन होंगे, है ना, कोई फिर उनके प्रिंस प्रिंसेस होंगे, कोई प्रजा होगी, कोई दरबारी होंगे, कोई मंत्री होंगे। अब ये सारी वैकेंसीज है, सारी सीट्स वेकेंट है अभी, और अपॉर्चुनिटी हम सबके पास में इक्वल है, हम किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चॉइस इज आर्स। शिव बाबा ने सिलेबस सबके लिए सेम ही है, आज हमारे राजस्थान में आरएएस के एग्जाम्स हुए हैं, आरएएस के शायद प्रीलिम्स या जो भी थे, है ना, तो सीट सबके लिए सेम है, सिलेबस सबके लिए सेम है, यही 7 दिन का कोर्स है, और उसके बाद आगे आने वाली स्पिरिचुअल क्लासेस भी सबके लिए सेम है, आपके लिए, हमारे लिए, हमारी बड़ी दीदियों के लिए, हमारे बड़े भाइयों के लिए, सबके लिए सेम है। पढ़ाई किसको करनी है, किसको करनी है, हम सबको अपनी अपनी करनी है, और अपनी पोजिशन को गेन करना है, है ना? लेकिन उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है, हर दिन स्पिरिचुअल क्लास, हर दिन मेडिटेशन, आत्मा को प्योरिफाई करते जाएंगे, हम कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने देखा स्वास्तिका के बारे में, हमने अपनी स्टोरी सुनी कि एक दिन मैं आत्मा ही, नेक्स्ट, मैं आत्मा ही एक दिन कैसी थी, सतो प्रधान सतयुग की थी। अब हम उसके आर्म्स देखेंगे ना, नेक्स्ट, अगर हम उसके आर्म देखेंगे ना, जो स्वास्तिका था, तो सतयुग में हमारी स्थिति थी ऐसी, आर्म ऐसे था, फिर जब हम त्रेता में आए तो वो नीचे हो गया, है ना, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल पोजीशन पे ऐसे हो गया, फिर जब द्वापर में आए तो कैसे है उसका आर्म, ऐसे करके ऐसे होता ना, देख सकते हैं ना आप, नीचे वाला कैसे, ऐसे। जब हम भक्ति करने आए तो हमने फिर मांगना शुरू किया है, प्रभु सुख दे दो, शांति दे दो, और फिर जब मनुष्य आत्मा, हम ही आत्माएं जो एक दिन दाता थी, हम ही आत्माएं कैसी हो गई, हमारा वही हाथ किस कार्य में आने लगा, वही हाथ एक दूसरे को दुख देने के लिए भी उठने लगा, तो हमारी स्थिति कैसी हो गई। लेकिन जो स्वास्तिका का एक और मतलब है, सु प्लस अस्थि, सु माना होता है सदार, अस्थि माना बेनिफिशियल, सदैव बेनिफिशियल, ये जो सृष्टि का चक्र है ये सदा कल्याणकारी है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद फिर से क्या आना है, सतयुगी सुबह आनी है, कलयुग का विनाश और कलयुग की डार्कनेस के बारे में तो हम सब जानते हैं। अभी कोविड आया तो कितना डर, कितना भय सब तरफ आ गया ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन अध्यात्म, आध्यात्मिक ज्ञान हमें उस डर से ओवरकम कराता है, हमें उस डर से ओवरकम करा के हमें ये भी बताता है कि इस अंधकार के बाद क्या आना है, इस अंधकार के बाद एक सुनहरी सुबह भी आनी है। अब देखिए स्वास्तिका का चित्र हम जब भी बनाते हैं तो इसके आसपास लिखा होता है शुभ और लाभ, ये शुभ भी है और लाभदायक भी है। नेक्स्ट, तो हमने देखा सृष्टि चक्र के बारे में, हमने पूरा जाना। अब ये जो सृष्टि का इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा है, अनादि विश्व नाटक है ये सृष्टि पर, जैसे हम छोटे छोटे नाटक देखते हैं। अब एक बात बताइए, एक सीडी है, है ना, सीडी जिसमें मूवी रिकॉर्ड होती है, आजकल तो यूएसबी का जमाना आ गया, उसके अंदर जो भी एक बार मूवी शूट हो गई वो डाल दी, वो चेंज होती है कभी? क्या विचार है? वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ऐसे ही ये जो सृष्टि का नाटक है सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये साइकिल एज इट इज ही घूमता है, इसीलिए इसको कहते हैं इटर्नली बेनिफिशियल, ये सदैव कल्याणकारी है ड्रामा। इसीलिए जो गीता सार आता है उसमें भी तो यही कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम सब कौन है इस सृष्टि नाटक रंगमंच के, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसके कौन है? हम सभी भी एक्टर्स हैं। कोई भारत में रहते हैं, कोई विदेश में रहते हैं, कोई हिंदू धर्म के कहलाते हैं अपने को, कोई और अलग अलग धर्मों के कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइम तो हम सभी कौन है? हम सभी इस इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं। और इसकी इस और दुनिया में एक और चीज कहते हैं, अंत भला तो सब भला। और अंत में क्या है, क्योंकि हमें वो समझ नहीं है ना कि अंत में क्या होना है, इसलिए हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। इसलिए हमको लगता है हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। एक और बहुत सुंदर पॉइंट आता है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि साइकिल रिपीट हो रहा है। कलयुग के बाद हर 5000 वर्ष में कलयुग आता है, फिर संगम युग आता है, शिव बाबा परम धाम से आते हैं, इस कलयुगी दुनिया को सत्ययुगी बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम सभी आत्माओं को, कोई भी नई बात नहीं है ना। सत्ययुग के बाद त्रेता आया ही आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग। जब इतने बड़े सिनेरियो में कुछ भी नया नहीं है, तो हमारी लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हो जाती है, तो उसमें भी हमको फिर घबराना नहीं है ना। जब सृष्टि पर ही कुछ भी नया नहीं है तो हमारे लाइफ में तो फिर कुछ भी बहुत है ना आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो कुछ अनहोनी हो। तो नथिंग इज न्यू, तो हमें बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेकर के डिस्टर्ब सरप्राइज्ड वो यस जेस्चर ऑफ एक्सक्लेमेशन और बातचीत में ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें किसी भी बात की कारण डिस्टर्ब या व्यथित नहीं होना है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि चक्र है जो हर 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता है। और जो भी बातें हो गई, घटनाएं हो गई, कल भी हमने देखा था ना, जब हम रोज रोज मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, हम उन बातों को, कई सारी घटनाएं, कई सारी बातें जो तक भी हमें डिस्टर्ब कर रही, हुई 20 साल पहले थी लेकिन आज तक भी उसका दर्द, उसका पेन हमारे अंदर है, उनको फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़े उनको। हम एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, शिव बाबा के नाम पर चिट्ठी लिख करके ऐसी कोई भी बात है जो अंदर में दर्द दे रही है, डिस्टर्ब कर रही है, वो सब बातें हम बाबा को दे करके भी उनको फुल स्टॉप लगाएं। उन बातों को पकड़ के नहीं रखना है, आगे बढ़ना है जीवन में, क्योंकि चक्र समय तो चलता जा रहा है, हम रुके हुए हैं तो फिर क्या होगा, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें समय के साथ चलना है। तो आज हमने जाना सृष्टि चक्र के बारे में, अपनी कहानी हमने सुनी, किसी और की नहीं थी ये कहानी, मैं ही सत्ययुग में थी, मैं ही त्रेता में आई, मैं ही द्वापर में आई, और अब मैं ही कलयुग में, और आज मैं ही संगम युग पर वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे शिव बाबा का परिचय मिला, शिव बाबा से ज्ञान मिला कि मुझे अपना परिवर्तन करना है। अंत भला तो सब भला, अब समझ आ गई ना, इतने दिन हम घबराए, चिंता हुई, कुछ भी हुआ, हाय क्या होगा, हाय क्या हुआ, सब कुछ होगा, लेकिन अभी समझ आ गया ना, तो अभी हमको इस समझ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम सब मेडिटेट करें कुछ क्षणों के लिए, जो हमने सुना हम अपनी ही स्टोरी को देखेंगे। ठीक है, सभी सीधा होकर के बैठेंगे, परम धाम में अपने दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें, ज्योति बिंदु के रूप में स्वयं को परम धाम में देखें, शांति की दुनिया, लाल प्रकाश की ये दुनिया, मैं चमकता हुआ सितारा अपने शिव बाबा के साथ अपने स्वीट साइलेंस होम में रहता था। पर जैसे ही सृष्टि पर सतयुग का आगमन होता है, मैं साकार सृष्टि की ओर आकर एक देवात्मा के रूप में मेरा जन्म होता है। सतयुगी दुनिया सृष्टि के स्वर्ण काल में स्वयं को देखें, सुख शांति और समृद्धि की दुनिया में मैंने जन्म लिया, बचपन बीता तो मैं बीतता गया, अनेक सुखों में जीवन व्यतीत किया मैंने, देव स्वरूप में जीवन जिया।
ऑफ कंप्लीट पीस
बारह सौ पचास वर्ष ये सुख चलते रहे और इस बीच में मैंने कई शरीर लिए और छोड़े, परंतु संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में सृष्टि पर अनंत सुखों का अनुभव करते हुए मैं आत्मा त्रेता युग में पहुंची। देवी देवताओं की इस दुनिया में भी मैंने 1250 वर्ष तक जन्म लिया, जीवन व्यतीत किया और फिर अपना शरीर अपना चोला बदली करके अपना पार्ट प्ले करती रही। समय के साथ साथ मुझ आत्मा की शक्ति और कलाएं थोड़ी कम हो गई, परंतु फिर भी उस कमी को पूरा करने के लिए हमने अपने ही देव स्वरूप की भक्ति करना शुरू किया। द्वापर युग में ईश्वर को याद किया, पुकारते रहे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनवाए, परंतु ये सृष्टि का चक्र समय आगे बढ़ता ही रहा और धीरे धीरे सब कुछ करते हुए भी कुछ आत्मा की शक्तियां और कलाएं माया रूपी पांच विकारों के वश होकर के कम होती गई। जैसे जैसे मुझ आत्मा की प्योरिटी कम होती गई, वैसे वैसे इस सृष्टि की भी प्योरिटी कम होती गई और इस सृष्टि पर कलयुग और अज्ञान का अंधकार छा गया। हम सब मनुष्य आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के वश होकर के कर्म करने लगे। ऐसे समय पर मैंने ईश्वर को बहुत याद किया, बहुत भक्ति की, वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े, जप तप यज्ञ किए और उसके बाद मेरे जीवन में एक सुनहरा समय फिर से आया, जब मेरी इस पुकार को सुनकर परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए, उन्होंने मुझे ये सत्य ज्ञान दिया। संगम युग पर मुझ आत्मा का निराकार शिव बाबा से मिलन हुआ, मुझे अपना सत्य परिचय मिला, मेरा शिव बाबा से संबंध जुड़ा और अब मुझे ये जागृति आई है, ये समझ मिली है कि मुझे देवत्व की ओर बढ़ना है, क्योंकि अब इस कलयुग के बाद इस सृष्टि पर सतयुगी दुनिया आनी है, उसके लिए संगम युग पर शिव बाबा जो ज्ञान और योग सिखा रहे हैं वो जीवन में धारण करते हुए मुझे स्वयं को सतो प्रधान सतयुगी बनाना है। मेरे परिवर्तन से ही संपूर्ण सृष्टि पर सतयुग आएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, कि आने वाली नई दुनिया देवी देवताओं की दुनिया होगी। ओम शक्ति,
ओम शक्ति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। और आज के जो प्रश्न आए हैं उसमें पहला प्रश्न है कि 5000 साल कल पहले बोल रहे हैं, कोई साइंटिफिक एविडेंस है?
अगर हम देखें तो दिखाते हैं आदि योगी शिव ने 5000 वर्ष पहले ही योग सिखाया था, जो हमारे आयुष मंत्रालय की कॉमन योगा प्रोटोकॉल की बुक है, तो वहां पर भी कई तरह के रेफरेंसेस दिए हैं। उसकी भी पहली लाइन यही है कि 5000 वर्ष पहले योग सिखाया गया था। तो यही वो समय है जब 5000 वर्ष पहले, अभी भी तो 5000 ईयर्स तो पूरे हो गए ना, वी आर एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो इस समय पर जो शिव बाबा योग सिखा रहे हैं वही रेफरेंस है। हम इतिहास भी देखेंगे तो मैक्सिमम जो इतिहास मिला है ना वो 5000 वर्षों के का ही सबसे ज्यादा हमने सुना है। तो कई और भी रेफरेंसेस हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पांच सृष्टि का जो चक्र है वो 5000 वर्षों का ही है, और इससे ज्यादा होता ना। अभी देखिए 5000 में हमें तो अपने लाइफ में पता नहीं कल सुबह क्या सब्जी खाई थी और शाम को क्या खाई थी, कल की भी नहीं आज की भी नहीं याद होती है ना। तो इससे ज्यादा लाखों का होता। आज देखिए 5000 ईयर्स जब शिव बाबा ने हमें बताया है तभी आज संसार की हालत 5000 वर्ष बाद ही कैसी हो गई है, और ये लाखों वर्ष होते तो क्या ही होता। आज 5000 वर्ष में ही सतयुग से लेकर आज तक कितनी पॉपुलेशन हो गई है, यही लाखों वर्ष होते तो क्या होता। आज ही मनुष्य आत्माएं ऐसी स्थिति में है कि वो कहती है हे प्रभु इससे तो ये सृष्टि ही ना होती, इससे तो हमें यहाँ से उठा लो, नहीं चाहिए हमें ये दुख की दुनिया, अगर ये समय और बढ़ जाए तो फिर क्या होगा सृष्टि। तो शिव बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है राजयोग में, उस हिसाब से सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का ही है।
जी दीदी, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि 5000 ईयर्स कैसे अकाउंट कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती में देखो तो कितने वर्षों की लड़ाई माता रानी और असुरों के बीच बताई है, हर युग के अंदर हजारों साल की लड़ाई बताया है, तो ये 5,000 साल में किस तरह से चक्र पूरा हो सकता है?
अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगेन हम उसी बात पर आएंगे, अभी तक हम वो रेफरेंस बुक्स रेफर करते थे, लेकिन अब स्वयं जो मालिक है, जो इस ड्रामा का डायरेक्टर है, जब वो स्वयं इस सृष्टि पर आ गए हैं, तो फिर नाउ वी डोंट नीड टू अगेन गो बैक एंड रेफर। बिकॉज बहुत सारी बुक्स अगर हम रेफर करेंगे ना, आप खुद ट्राई करके भी देखिएगा, तो दे ऑल आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ ईच अदर, आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दूसरी बात तो है ही नहीं। और जब परमात्मा ने ही आकर के कह दिया है, इट्स जस्ट लाइक कि अगर हमारे बारे में हम 10 लोगों से पूछें कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, तो हमारे को सब लोग अलग अलग बातें बताएंगे। जिसके साथ रिश्ता अच्छा होगा कहेंगे बहुत अच्छे हैं, कहेंगे बहुत खराब हैं, इनका तो मूड ऐसे रहता है, हेल्प नहीं करते हैं, है ना। कोई कहेगा नहीं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, तो सबका अलग अलग व्यूज होगा। पर सत्य क्या है कौन बता सकता है? हम स्वयं बता सकते हैं ना। ऐसे ही इस सृष्टि का भी सत्य क्या है, रेफरेंस बुक्स तो फिर बहुत सारी है। इस बुक में ये लिखा है, फिर उसी कई बार आप स्टडी करेंगे ना, तो वैसा सा ही किसी और बुक में हम देखेंगे ना, तो वो उसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहा होगा। तो इसलिए हम बहुत सारी बातों में ना जा करके हमें क्या करना है, हमारा गोल एंड आर फोकस शुड बी ऑन दिस पॉइंट कि अब अगर मुझे सही समझ मिल रही है, मुझे ज्ञान सुनने से जीवन में परिवर्तन, सुख शांति का अनुभव हो रहा है, देन आई हैव टू मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन। कहीं पर भी भाव ये नहीं है कि आपकी जो मान्यताएं हैं वो गलत है, वो सब कुछ सही है ना। लेकिन फिर भी अब जब वो सुप्रीम टीचर आ गया है, देन वी डोंट नीड टू आस्क एनी वन और वी डोंट नीड टू रेफर एनी अदर टेक्स्ट बुक्स। अब जो वो कह रहे हैं अभी तक, तो एक और गुड न्यूज आपके लिए, अभी तक जो हमने पिछले 5-6 दिन में सुना और जो अगले 2-3 दिन सुनेंगे, वो तो हमने जो सुना, हमने जो अपने जीवन में अनुभव किया, वो आप तक पहुंचाया था। अब आगे 3-4 दिन बाद जो आप सुनेंगे, वो डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य होंगे। हम जब खुद उनको सुनेंगे, हम खुद अनुभव कर पाएंगे। ये इट्स नॉट कि मैं यहां से आपको विश्वास दिलाऊं कि यही सत्य है, ऐसा है, वैसा है। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वी शुड कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। हम खुद अनुभव करें, खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद ही रिजेक्ट करें। किसी और से ना रिजेक्शन कराना है, ना किसी और से एक्सेप्टेंस लेना है कि नहीं ये दीदी बोल रहे हैं ना, शायद यही सही होगा, दिस इज नॉट राइट। ये दीदी कह रहे हैं ना, नहीं हमने तो ये सुना है इसलिए रॉन्ग होगी बात, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है, वो भी रॉन्ग है। हमको क्या करना है, हमको खुद सुनना है, समझना है, अनुभव करना है, देन किसी डिसीजन पर पहुंचना है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में एक बात और थी वो ये थी, देवियों की लड़ाई असुरों से दिखाई है। यस, हम सब आत्माएं जिनमें देवत्व था सतयुग में, आज हम सब अपने ही मन के असुरों के साथ लड़ रहे हैं। मुझे रोज गुस्सा आता है, बार बार अपने आप को कहती हूँ मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांति से व्यवहार करना है, प्यार से रहना है। रोज रोज कितने समय से चल रहा है, पहले इतना आता था, फिर इतना हुआ, पर अभी भी दिन में एक बार तो आता ही है, है ना। पहले बहुत अटैचमेंट था, बहुत लालच था, ये भी चाहिए, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी अंदर में फाइट चल रही है। किसी चीज को देखते हैं तो बोलते नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो क्या हो रहा है, जो देवत्व वाली आत्मा थी उसकी आज भी फाइटिंग चल रही है असुरों से, बाहर के असुरों से नहीं, अंदर के ही असुर से चल रही है। किसी को नहीं दिख रहा कि मेरी कितनी फाइट चल रही है, लेकिन बहुत फाइट चल रही है। तो ये वही रेफरेंसेस है, हर एक का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। सिर्फ यही सजेशन है, कंटिन्यू दिस जर्नी एंड एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन।
जी, बहुत सुंदर आंसर। बचपन से कुछ और ही सुना है, जैसे सत्युग लाखों वर्ष का था, त्रेता युग का राम की स्टोरी है और द्वापर युग में कृष्णा की स्टोरी है। दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ध्यान बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए क्या करें?
फिर से आंसर सेम है, बहुत सारी बुक्स, जितने हूँ उतनी बातें, रॉन्ग कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना अनुभव है। मुझे क्या करना है, आई हैव टू डिसाइड। मुझे कहीं किसी रेफरेंस पॉइंट पर तो टिक करके एक्सपेरिमेंट करना होगा ना। मैथ्स में भी क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं, अज्यूम, सपोज, लेट अस से एक्स, तब हम आंसर पर पहुंचते हैं, फिर हमें पता चलता है वो एक्स की वैल्यू क्या थी। ऐसे ही हमें भी कुछ तो कहीं तो रुक करके प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो अब कहीं की जगह जो हमें मिल रहा है, जो हम इतने दिन से सुन रहे हैं, क्यों नहीं हम उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें, तभी हम उस कंफ्यूजन से निकल पाएंगे। रोज रोज मूव ऑन करते रहेंगे तो फिर नहीं होगा
जी। नेक्स्ट है, कुछ दुखी कुछ खुशी क्यों महसूस करते हैं?
कुछ दुखी और कुछ खुशी, कभी दुख और कभी खुश।
हाँ जी, इन्होंने बस इतना लिखा है, कुछ दुखी कुछ खुशी क्यों महसूस करते हैं?
हमारे संकल्पों पर है, जैसे हमें संकल्प आते हैं, अभी अभी मुझे कुछ याद आ जाए, कोई मेरा प्रिय व्यक्ति याद आ जाए जो चला गया है, इस दुनिया में नहीं है, तो शायद मुझे उस संकल्प, क्योंकि उनकी याद आई तो मुझे दुख की अनुभूति होने लगेगी, उनके साथ मेरा प्रेम था तो दुख की अनुभूति होने लगी। लेकिन अगर उसकी जगह मुझे याद आया कि हाँ मैं 2 साल पहले वहां गई थी, वहां ये सब मिले थे मुझे, वो प्राइज मिला था, वो अवार्ड मिला था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो सुख की अनुभूति भी होगी। इसीलिए कहते जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम अनुभव करेंगे। तो इसीलिए सारा सारा जो फाउंडेशन है वो यही है कि यहाँ क्या चल रहा है, और यहाँ जो चल रहा है ना वो अभी बहुत रैंडम चल रहा है, अपने आप आता है, अपने आप चल रहा है, उधर गए तो ये आ गया, इधर गए तो ये थॉट आ गया। हम अपने थॉट्स पे स्टेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द राइट थॉट। इसीलिए जैसे हम रोज खाना खाते हैं अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, ऐसे ही हम आगे आने वाले क्लासेस में जो स्पिरिचुअल क्लास सुनेंगे, जो डेली स्पिरिचुअल क्लास करेंगे, वो हमारे मन के लिए भोजन होगा, और वो इतना पावरफुल है, उससे पावरफुल खाना भोजन हमारे मन के लिए इस दुनिया में कुछ दूसरा नहीं है। जब हम वो रोज रोज स्पिरिचुअल डाइट लेंगे, स्पिरिचुअल फूड लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो गैप होता है ना, सुख और दुख, कभी खुशी और कभी गम, वो कम होता जाएगा।
जी दीदी। हाँ दीदी, क्वेश्चन तो अभी इतने ही हैं, बाकी एक विद्या सागर जी का है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है,
क्या सोल्यूशन है?
साथ में चित्रा बहन, एक और क्वेश्चन है एक भाई का कि उनका ध्यान भी बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए क्या करें? तो इन सब चीजों का आप एक साथ भी जवाब दे सकते हैं।
जी दीदी, मुझे लगता है जो कह रहे हैं ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट होता है, दूसरे भाई जी का क्वेश्चन है कि गुस्सा भी बहुत आता है, हमने बात की थी ना देवियों की, देवियां सिर्फ ये शरीर से देवियां नहीं, देवी का भाव है देवत्व, हम सभी में वो देवत्व था, हम सभी में वो पीस थी, कामनेस थी सतयुग की। क्या कर रहे हैं? बार 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 अंदर में युद्ध कर रहे हैं। लेकिन युद्ध करने वाले योद्धा अगर कमजोर होगा, वो तो बहुत पावरफुल है, गुस्सा क्रोध वो तो बहुत पावरफुल है, कमजोर कौन हो जाते? हम हो जाते, तो वो हमें ओवरटेक कर लेता है और फिर वो प्रेस हो जाता है, हमारी जो शांति है ना वो दबी रह जाती है। तो अपने आप को एम्पावर करना ही सोर्स है इन सब परिवर्तन का। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जिन्होंने ये दूसरा क्वेश्चन जो साथ वाला है वो भी कर सकते हैं, हम जब रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं, तो हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सोने से जस्ट पहले और सुबह उठते ही हम कुछ रिटन होमवर्क करें। जैसे अगर क्रोध बहुत आता है तो हम ये लिख सकते हैं, सोने से पहले हम कुछ एक पेज दो पेज हम लिख सकते हैं, आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि जब हम लिखेंगे तो हमारा तन और मन दोनों सिंक्रनी में होगा, वो बात सीधे अंदर तक उतर जाएगी, हमारी नींद की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। और जब हम सुबह उठें फिर से हम यही होमवर्क करें, एंड देन उसके बाद हम सारी चीजों में हम एंगेज हों जो भी कुछ हम करते हैं, ये हम कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे, क्योंकि जितनी हमें ये स्मृति रहेगी कि मेरी ओरिजिनल नेचर शांति है, तो वो एक्सप्रेस होने लगेगी। और दूसरा जो क्वेश्चन है डिस्ट्रैक्शन का, उसके लिए भी अगर हम कुछ ऐसा ही रिटर्न अफर्मेशन करें, कुछ रिटर्न होमवर्क करें, हम ये होमवर्क कर सकते हैं, मैं आत्मा एकाग्र चित्त हूँ, मेरी बुद्धि शांत है। डिस्ट्रैक्शन के कारण क्या है? लॉट ऑफ डेविएशन, कॉन्सेंट्रेशन इज एब्सेंस ऑफ डेविएशन। तो हमको बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन के, तो बहुत सारे कारण है, आज हमारे हाथ में मोबाइल ही है, इसमें कितनी बार हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दिन में 500 बार भी कई बार इस मोबाइल का लॉक खुलता है, ऐसी स्टडीज भी आती है, हर कुछ क्षणों में एक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो डिस्ट्रैक्शंस के कारण जो है उनको भी हम थोड़ा मिनिमाइज करें, और जो हम कुछ अच्छा सुन रहे हैं उसको लिखें, उसका चिंतन करें, उसको बार बार हम याद करें। जो खराब बातें हैं, जो गलत बातें हैं, दूसरों की लाइफ की बातें हैं, उनको कुछ समय के लिए हम छोड़ दें, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस एनीथिंग।
थैंक यू दीदी। और एक साथ एक बात और, जैसे कि दीदी ने बताया ये तो जरूर करें, और बाकी जो हम क्वेश्चंस का डे बाय का भेजते हैं आपको, वो जरूर उनको आंसर कीजिए, फिर सबमिट जरूर कीजिए, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि अगर सेशन ध्यान से सुना है तो आंसर्स बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से आपको करने में बल्कि आनंद आएगा, और आप सोचेंगे और मिलने चाहिए आपको क्वेश्चंस। तो ये जरूर करना है अपना होमवर्क, और साथ में कल का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल है कार्मिक फिलॉसफी, जो कि आप सुनेंगे और हम समझेंगे कि कैसे ये सब जो हो रहा है कल्याणकारी क्यों है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं क्या क्यों कैसे, तो ये जानेंगे। तो जरूर सुनिएगा, समय पे ज्वाइन होइएगा, और जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी आपको सिखाया जाता है, उसको राइट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। ये आपके नोट्स हैं जो आपको हमेशा आपके काम आने वाले हैं आगे भी। तो सेशन अटेंड कीजिए, भगवान को याद कीजिए, और मेडिटेशन जरूर कीजिए। तो थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ओम शांति।
थैंक यू मोनिका बहन।
मंगल मुहूर्त है, मंगल बेला, मंगल मुहूर्त है मंगल बेला, प्यार लोचन खोलो, ओम शांति बोलो। मंगल मिलन की ये है घड़ियां, मन में मगन होके डोलो, ओम शांति बोलो। लगा लो ध्यान प्रभु का,